समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, परिक्रमा में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं चारू सक्सेना और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रम्या। हाय रम्या।
हेलो चारू, आई एम वेरी गुड आफ्टरनून।
धरती घूम रही है, क्या सोच के घूम रही है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन क्यों ना आप और हम इस धरती पर घूमते हुए ऐसे काम करें जो इस दुनिया को सभी के लिए और भी खूबसूरत बनाए। लगता नहीं ऐसा कि हर पल बहुत इम्पोर्टेंट है?
बिल्कुल बिल्कुल, that's a lovely thought Charu, and thank you for sharing such a lovely thought with our listeners, and we welcome all of you who have tuned into Parikrama on 100.1 FM. I'm Ramya and with me today is my lovely co-host Charu. It is a hot and scorching Tuesday afternoon, so sit back, grab something cool to drink and relax as we bring for you a selection of news, our discussion segment, Dateline India, reports, capsules, tributes and much more. All these over the next 30 minutes. We begin with the news headlines first, Charu.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी करेंगे।
India and the US hold deliberations on initiative of critical and emerging technology, underscore their commitment on partnership across strategic technology sectors.
रेटिंग एजेंसी फिच ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान 7% से बढ़ाकर 7.2% किया।
इंडियन फिल्म मेकर विनोद गनात्रा कन्फर्ड नेल्सन मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड।
और भाला फेंक विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर प्रतियोगिता में भाग लेंगे।
And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. Today we will talk about yoga. International Yoga Day will be celebrated on 21st of June to raise awareness around the world about the many benefits of practicing yoga. It's a day to recognize this ancient Indian practice that focuses on mental and physical well-being. Today, Union Ayush Minister Pratap Rao Jadhav launched a common yoga protocol book in Braille script to support visually impaired people to learn and practice yoga with convenience. He also launched Professor Ayushman Cosmic on Yoga. This book will help children to learn and practice yoga with interest and entertainment.
पहली प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक बुक, जिसे बच्चे सरल भाषा में और आकर्षक चित्रों के माध्यम से योग की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ब्रेल लिपि में कॉमन योग प्रोटोकॉल बुक, जो हमारे नेत्रहीन साथी अभी इस पुस्तक का उपयोग कर योग की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, लॉन्च योग की शैक्षिक दुनिया में एक बहुत बड़ा प्रयास है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को श्रीनगर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वयं और समाज के लिए योग। एक विशेष पहल के रूप में इस वर्ष भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक अनूठी पहल अंतरिक्ष के लिए योग का आयोजन कर रहा है। इसरो के सभी वैज्ञानिक और अधिकारी सामान्य योग प्रोटोकॉल दिशा निर्देशों के अनुसार एक साथ योग करेंगे। गगनयान मिशन के सदस्य भी योग अभ्यास करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के वैश्विक अभियान में शामिल होंगे। योग के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने माई गॉव पोर्टल और माई भारत पोर्टल पर योगा टेक चैलेंज शुरू किया है। इसका उद्देश्य योग से संबंधित उपकरण, सॉफ्टवेयर और सहायक उत्पाद विकसित करने वाले स्टार्टअप और व्यक्तियों की पहचान करना तथा उन्हें बढ़ावा देना है। तो फिर आप करेंगी रम्या योग?
बिल्कुल बिल्कुल करूंगी। और एक योग तो हम रोज ही करते हैं, बताइए इतनी धूप में कौन सा योग हम प्रैक्टिस करते हैं?
शवासन। बिल्कुल ठीक।
एंड जोक्स अपार्ट, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस योगा एवरी डे, एंड हियर इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द रीजंस बिहाइंड सेलिब्रेटिंग योगा डे। Yoga is a practice that originated in India thousands of years ago. Celebrating it acknowledges its historical significance. Yoga goes beyond physical exercise. It incorporates mental and spiritual aspects, promoting a sense of overall well-being. Yoga's popularity has grown tremendously worldwide in recent times. The day celebrates its universal acceptance.
साल 2014 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएन के समक्ष 21 जून को योगा दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा था और इसके बाद से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया और योगा के हमारे जीवन में महत्व और जरूरत को उजागर करते हुए लोगों को योगा करने के प्रति प्रोत्साहित करने जैसे कारणों से हर साल योग दिवस मनाया जाने लगा।
वैसे तो बिल्कुल घर जाके आप कौन सा योगा आज प्रैक्टिस करेंगे?
ओ माय गॉड, मत कहो। वो आपको पता है कि कौन सा करेंगे और हर कोई जब फंस जाता है तो क्या करता है, लेकिन हाँ ये फैक्ट है कि सुबह उठ के योगा करते ही करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल,
हमारे जो बड़े लोग हैं या हमारे पूर्वज, सभी लोगों ने योगा को बहुत महत्ता दी।
उस वक्त जहां जिम वगैरह होता था, लोग योगा करके इतना फिट रहते थे, उनमें एक ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, इतने फिट रहते थे। तो बिल्कुल हमें सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार सब करना चाहिए और ठाकुर के शवासन।
तो रम्या, अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो वैसे तो आज है ही योगा दिवस की बात करने का दिन। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस को लेकर लोगों में खास उत्साह नजर आ रहा है, हर कोई उसे अपने तरीके से मनाने की तैयारी में जुटा है।
जी,
एक रिपोर्ट।
देश के अन्य भागों की भांति पंजाब के लोग भी आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लेकर बेहद उत्साहित हैं। विभिन्न गैर सरकारी व समाज सेवी संस्थाओं के अलावा स्कूलों व कॉलेजों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर योग दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां चल रही हैं। हर उम्र वर्ग के लोग राज्य भर में होने वाले योग दिवस समारोहों का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ये समारोह सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाएंगे, जो कि अलग अलग समय पर दिन भर चलते रहेंगे। रोजाना योग करने वाली कपूरथला की निवासी कृतिका अरोड़ा योग आसनों से मिले लाभ से उत्साहित नजर आती हैं।
मैं रोज योगाभ्यास करने आती हूँ, मुझे योगाभ्यास से बहुत लाभ है। मेरी हाइट नहीं इतनी बढ़ी थी, योगा से मेरी हाइट भी बढ़ी और सांस लेने में भी थोड़ी प्रॉब्लम थी। अब थोड़ा बाहर आती हूँ, वातावरण साफ है, तो योगाभ्यास से मेरी सारी प्रॉब्लम दूर होगी।
इसी तरह बोगा के निवासी अनमोल शर्मा पिछले कई वर्ष से बतौर योग प्रशिक्षक स्थानीय लोगों को योग आसनों के साथ जोड़ रही हैं।
मैं पिछले कई सालों तो मोगा दे विच अलग अलग एरियाज दे विच अपनी योगा क्लासेस चला रही हैं और बहुत सी दिक्कत जो औरतां दियां ज्यादातर आंदियां ने, जिस तरह बैक प्रॉब्लम्स, माइग्रेन, डिप्रेशन, सर्वाइकल, पीसीओडी दी प्रॉब्लम, इन्हां सारियां बीमारियां दा इलाज योगा नाल बहुत ही आसानी नाल कीता जांदा है।
निश्चित रूप से आज योग समाज में हर किसी के जीवन में एक नया उत्साह व संचार भरकर जीवन को स्वस्थ, खुशहाल व रोग मुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। परिक्रमा के लिए जालंधर से शिशु शर्मा शांतल।
तो रम्या, अब आप केरला लेके चलोगी?
जी बिल्कुल। केरला'स कोझिकोड इज ऑल सेट टू होस्ट द मलाबार रिवर फेस्टिवल 2024 फीचरिंग द इंटरनेशनल वाइट वाटर कायाकिंग चैंपियनशिप। अ रिपोर्ट।
The 4-day Malabar River Festival will be held from July 25th to 28th and is being organized on behalf of the Adventure Tourism Promotion Society, District Tourism Promotion Council and Kozhikode District Panchayat with the technical help from the Indian Kayaking and Canoeing Association. Kerala has been conducting this festival in a grand way so that the footfalls to the region keep rising. This event aims to promote whitewater kayaking in the region and will be held in Tusharagiri, Chalipura and Iravayanipura. The high octane events and pre-events will host over 100 national level kayakers from India and kayaking professionals from over 20 countries. A series of pre-events will be conducted to engage the participants to foster fun and friendship. These include water polo, swimming, off-road national championship, frisbee, mountain biking, cycle rally, mud football, off-road jeep safari, motorcycle rally, angling, boat race, mountaineering training, rain walk and rugby. In addition to whitewater kayaking, major events like the extreme race, water cross, giant slalom, water polo and fish bait contest. This unique festival aims to put Kerala's rivers on the map as world-class kayaking destinations and inspire both professional and local kayakers. Mayush Shah for Parikrama from Thiruvananthapuram.
अच्छा चारू, अंडमान और निकोबार आइलैंड से क्या खबर आ रही है?
ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने और आत्महत्या की रोकथाम के लिए प्रशासन के विभिन्न विभाग की ओर से पहल की गई है, जो बहुत अच्छी पहल है।
बिल्कुल बिल्कुल।
देखो ना, हाल ही में पोर्ट ब्लेयर में आयोजित बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई कि कैसे इस प्रवृत्ति को रोका जा सके। आइए सुनवाते हैं एक रिपोर्ट।
जी,
मुख्य भूमि से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे इन द्वीपों के स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या की रोकथाम के लिए उचित वातावरण विकसित करने के लिए नीति संवाद का आयोजन किया जा रहा है। अंडमान निकोबार प्रशासन की आयुक्त व सचिव स्वास्थ्य नंदिनी पालीवाल की अध्यक्षता में पिछले दिनों आयोजित बैठक में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पुलिस और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मानसिक स्वास्थ्य के बढ़ते मुद्दों और आत्महत्या को रोके जा सकने वाली त्रासदी की चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान ने द्वीप समूह सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक बहुराज्य परियोजना शुरू की है। इस परियोजना का उद्देश्य स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान के स्कूलों और कॉलेजों के नमूने हस्तक्षेप के एक पैकेज की मापनीयता को विकसित और परीक्षण करना है। स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तकनीकी सहयोग से इसकी अगुवाई कर रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आत्महत्या की दर राष्ट्रीय औसत से 4 गुना अधिक है। इस तरह के कार्यक्रम से आत्महत्या को रोकने के लिए रणनीति विकसित करने में मदद मिलेगी। प्रशासन के इन प्रयासों से न सिर्फ अभिभावकों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को शिक्षित किया जा सकेगा, बल्कि इसकी रोकथाम के लिए मानसिक स्वास्थ्य पर जोर देते हुए सामाजिक बदलाव लाने में भी कामयाबी मिल सकती है। परिक्रमा के लिए पोर्ट ब्लेयर से मैं राकेश चंद्रलाल।
The Mumbai International Film Festival began in Chennai this week and will extend till the 21st of this month. The regional director of the National Film Development Corporation, Rohini Gautaman, said this will be a platform for film learners and all those who want to be successful in the film industry. More from our correspondent.
Film critics from neighboring states have also been attending the festival. College-going students have also been benefited by this event in Chennai. The festival is being conducted in the Music College campus at Chennai. Every day, 5 to 7 remarkable films are being screened in the Preview Theater. Films from English, Hindi, Nepali, Arabic, French, Serbian, Dutch, Mandarin, Portuguese, Japanese, Persian, Hebrew and Spanish languages are being screened here with subtitles in the local language. We would like to bring you the reactions of those who participated in the festival.
My name is Prithvi and I am a film enthusiast, and this was a great opportunity to, you know, participate in this film festival. Even though these are documentary films, but every film speaks of a story and you get a different perspective of, you know, what's happening worldwide. Even, you know, there are stories which depict natural beauty and relationship of man with animal. Then you have stories which depict the struggle of people. The last film that we saw was similar to India, what happened for during COVID, and then the previous one, it was an eye opener because people are getting fleeced when they are working they are taken to work in the US. So a variety of and a range of subjects are being covered, and the cinematic way of explaining it is, you know, very very poetic, sometimes it's very blunt, hits hard.
I incidentally passed through this way, just saw that this thing is happening here, Mumbai Film Festival, was curious to know what it was, and I got an opportunity to watch 2 movies, ARF, the Italian animation film, and Japanese fiction. Surprisingly, both was very nice. The first one was dedicated to the children of war victims, and the second one was very philosophical.
This is Blessy from Akashwani, Chennai.
The much-coveted V. Shantaram Lifetime Achievement Award was awarded to the illustrious wildlife filmmaker Subbaya Nallamuthu at the 18th Mumbai International Film Festival. Mr. Nallamuthu has made exceptional contributions to wildlife cinematography, earning him global acclaim. On the sidelines of the film festival, our correspondent Ankita Apte spoke to Mr. Nallamuthu. Let's listen.
Sir, you've been conferred with V. Shantaram Lifetime Achievement Award at MIF. So how are you feeling? It's a surprise one. Finally, I'm just very happy that there's some very good, very big recognition, particularly for non-fiction, because I'm a non-fiction guy. So in that way, these kind of awards, you know, really motivate people like us to, you know, do, you know, more work.
So what message would you like to give to today's youth who want to build their career in wildlife filmmaking?
See, all the youngsters are very, very enthusiastic in terms of cameras, in terms of, you know, clicking pictures and posting on Instagram, getting appreciation. All are okay. No, I always say filmmakers or anyone who really want to do something for wildlife, they need to learn the storytelling first. Whether it is a 10-second or a 20-second or a 10-minute, unless whatever the story, the way you or anyone's perspective, it's a personal perspective. They start adding value by telling a story to an image or a safari or an experience. That is the only thing you can do, if the message will reach. And if you are a professional, you can do that as a professionally and make film. Nowadays it's very easy to operate a camera. Anyone can operate a camera. Everyone is a cameraman, and there's no difference between the high end and low end. At the end of the day, a person like me and high end, we are also looking for stories. They're having it, but they need a story, because content is the only thing is going to take forward. I won't call it a waste of time, it's a waste of effort, you know. At the end of the day, everything needs a story. That's what the young people should learn.
Now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 16 नवंबर 1835 को हुआ था। उनका नाम मणिकर्णिका तांबे रखा गया था, लेकिन उनके माता पिता उन्हें प्यार से मनु और नाना साहेब पेशवा छबीली कहकर बुलाते थे। उनके पिता बिठूर चले गए, जहां वे बड़ी हुई और नाना साहेब तात्या टोपे तथा राव साहिब के निकट संपर्क में आई। लक्ष्मीबाई ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त की, घुड़सवारी और छोटे हथियार चलाना भी सीखा। वे सुंदर, बुद्धिमान, ऊर्जावान और साहसी थीं। उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से 1842 में हुआ।
आकर्षक व्यक्तित्व की धनी लक्ष्मीबाई में उच्च प्रशासनिक क्षमता कूट कूट कर भरी थी।
जब 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम शुरू हुआ तो रानी लक्ष्मीबाई इसमें शामिल हो गईं और उन्होंने अकेले ही मोर्चा संभाला। 8 जून 1857 को सिपाहियों द्वारा जोखन बाग में अंग्रेजों के नरसंहार और उनके दिल्ली जाने के बाद रानी ने सरकार की बागडोर संभाली और सामने आई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया।
20 मार्च 1858 को ब्रिटिश जनरल ह्यूजरोड के हमले के दौरान उन्होंने 2 सप्ताह तक वीरतापूर्वक झांसी की रक्षा की और अंततः अपने पुत्र के साथ घोड़े पर सवार होकर कालपी निकल गई। बाद में वो तात्या टोपे और राव साहब की सेना में शामिल हो गईं, लेकिन उनकी संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने हरा दिया। इसके बाद लक्ष्मीबाई ग्वालियर पहुँच गयी और ग्वालियर पर कब्जा कर अंग्रेजों को चौंका दिया।
जब सर ह्यूजरोड ने ग्वालियर किले पर नए सिरे से हमला किया तो रानी ने अंतिम सांस तक मुकाबला किया। वे दोनों हाथों में तलवारें और मुंह से घोड़े की लगाम थामे आखिरी दम तक लड़ी। 18 जून 1858 को युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुई। 18 जून 1946 को स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया ने गोवा में पुर्तगालियों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम चरण की मशाल जलाई। उन्होंने मडगांव में जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं देने के सरकारी आदेशों का खुले तौर पर उल्लंघन किया और जिले के प्रशासक कैप्टन फोर्टुनातो मिरांडा को फटकार लगाई।
गोवा में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हुए लोहिया ने गोवा वासियों को एक खुला पत्र लिखा था। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन का उद्देश्य नागरिक स्वतंत्रता हासिल करना था, लेकिन जिन तरीकों का पालन किया जाना था वे जन जागरण के थे।
लोहिया ने भारतीयों का आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता की लड़ाई में गोवा के भाइयों की मदद करें, लेकिन पुर्तगाली शासकों ने समय के संकेतों को समझे बिना सविनय अवज्ञा आंदोलन को मोविमेंटो दारुआ कहा, जिसका अर्थ है सड़क के किनारे का आंदोलन।
हालांकि आंदोलन पूरे राज्य में फैल गया तथा गोवा, दमन और दीव को 1956 में पुर्तगाली अधीनता के 451 वर्षों के बाद मुक्त करा दिया गया और इस तरह भारत की भूमि से अंतिम औपनिवेशिक अवशेष मिटा दिया गया।
एंड लिसनर्स, नाउ इट्स टाइम फॉर सम बिजनेस न्यूज़। India's equity benchmark indices registered gains today. The Sensex rose 308 points or 0.40% to close at 77,301. Nifty gained 92 points or 0.39% to settle at 23,558. In the forex market, the rupee closed at 83.41 rupees against the US dollar. At the multi-commodity exchange, gold futures for August contract was trading around 71,284 rupees per 10 grams. Silver futures for July contract was trading around 88,447 rupees per kilogram when the reports last came in. And in intraday trade, Brent crude was trading at $83.95 per barrel.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल. भाला फेंक में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा आज फिनलैंड के तुर्कू में पावो नूर्मी स्टेडियम में विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाग लेंगे. मौजूदा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता और डायमंड लीग फाइनल विजेता को जर्मनी के मैक्स डेंग से चुनौती मिलेगी.
In the ICC Men's T20 World Cup, the 8 teams that qualified for this phase have now been finalized. Bangladesh was the last team to qualify after their victory over Nepal. The Super 8 round will begin on 19th June and end on 25th. The first group consists of India, Australia, Bangladesh and Afghanistan, while the second group consists of the USA, England, the West Indies and South Africa. The first Super 8 match will be played between the USA and South Africa tomorrow. India will take on Afghanistan in their first match on 20th June. All the matches will be played in the West Indies. India, Australia, Afghanistan, the West Indies and South Africa are the only teams to progress to the Super 8 on an unbeaten note. The USA and England, on the other hand, made it through despite their respective losses to India and Australia in the group stage.
सो रम्या, अब वक्त है करीब से देखने का उन खास लोगों को जिन्होंने आज जन्म लिया या दुनिया से विदा हुए.
जी,
तो सबसे पहले लेते हैं मुश्ताक अली जी को. पता है ये पूर्व क्रिकेटर हैं और टेस्ट बल्लेबाज मुश्ताक अली का जो निधन है, मतलब पूर्व क्रिकेटर और टेस्ट बल्लेबाज मुश्ताक अली जी का जो निधन है वो 2005 को हुआ था.
अच्छा.
आज ही के दिन और भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से नवाजा था. 1936 में विदेशी सरजमी पर भारत की ओर से पहला टेस्ट शतक जड़ने वाले अली की बल्लेबाजी आज के T20 बल्लेबाजों जैसी थी. मतलब ये बड़ा सरप्राइज होता था उस समय में. और वो टेस्ट मैचों में गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई करते थे और दर्शक उन पर जान छिड़कते थे. अली ने 11 टेस्ट मैचों की 20 पारियों में 32.21 की औसत से कुल 612 रन जड़े. उन्होंने अपने करियर का आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ खेला था और चेन्नई में खेला गया. ये मुकाबला भारतीय क्रिकेट में कभी भुलाया नहीं जा सकता.
जी
रम्या, इसमें टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रौंदा था और ये फिरंगियों पर हिंदुस्तानियों की पहली टेस्ट फतह थी. जब बंटवारा हुआ तो टीमें भी बंट गईं. अली के दोस्त भुट्टो ने उनसे कहा आप पाकिस्तान आ जाइए, तो जो कुछ भी भारत में आपको मिला है ना मैं यहां दिलवाऊंगा. इस पर अली ने कहा कि जो मोहब्बत और इज्जत मुझे इंदौर हिंदुस्तान से मिली है ऐसी कहीं नहीं मिल सकती. मैं अपना हिंदुस्तान नहीं छोड़ूंगा.
इट्स अ ब्यूटीफुल थॉट.
बिल्कुल.
And today we are remembering veteran actor Janaki Das on his death anniversary. In addition to being a phenomenal actor, writer and a production designer, he was also a cyclist and the only Indian member of the International Olympic Committee at the 1936 Olympic Games in Berlin, along with hockey legend Major Dhyanchand, and was the only Indian to have broken the world record in cycling between 1934 and 1942. In the 40s, along with Sohrab Bhut, he founded the Cycling Federation of India. Janaki Das debuted in films, playing a major role in Khazanchi in 1941, produced in Lahore. He was not seen again until 1946, when he would appear in Dr. Kotnis Ki Amar Kahani. From then on, he would continue to play roles with increasing vigor over the years. As a production designer, Janaki Das was responsible for founding many famous Indian actors' careers. He was responsible for Madhubala's role in Sohrab Modi's Daulat in 1947, and he has also introduced actors like Meena Kumari and Mala Sinha. In 1985, he wrote the script for the film Yaadon Ki Qasam. Janaki Das was the recipient of numerous national and international awards. Let us listen to a dialogue from his film Bulbul, in which he is having a serious conversation with Dilip Kumar, who played the role of his son.
Bansi, Bansi, Bansi! राधा से मालिक बंसी, मैं पूछता हूँ वो रात रात भर कहाँ गायब रहता? म्यूजिक कॉन्फ्रेंस, संगीत सम्मेलन, गाना बजाना, भगवान जाने उसे कब होश आएगा। अरे कभी आदत अच्छी कभी आदत बुरी, तू पागल तो नहीं हो गया? मैं उसे सरकारी नौकरी दिलाना चाहता हूँ और वो गाने बजाने में वक्त बर्बाद कर रहा है, क्या ये अच्छी बात है?
चलो भाई ऐसा है रम्या, अब हम बात करते हैं अली अकबर खान की।
जी,
ये ना मेहर घराने के विश्व प्रसिद्ध संगीतकार, शास्त्रीय गायक और पद्म विभूषण से सम्मानित सरोद वादक थे और इनका जन्म आज ही के दिन 2009 को हुआ था और वे मैक आर्थर फाउंडेशन का जीनियस ग्रांट पाने वाले पहले भारतीय संगीतकार बने। उन्होंने शाम के चार रागों को मिला के 3 मिनट का राग चंद्र नंदन रचा। ये उस्ताद खान की खास रचना माना गया और बाद में इसका बड़ा स्वरूप रिकॉर्ड किया। आइए सुनते हैं उस्ताद खान की ये बेहतरीन संगीत रचना।
Today we are remembering writer Devki Nandan Khatri on his birth anniversary. He contributed to some of the most popular novels that not only helped to introduce a new genre in Hindi literature, but also led to the enrichment of the Hindi language as a whole. Devki Nandan Khatri passed away in 1913, leaving behind a collection of Hindi mystery novels that continue to captivate young readers. One of his notable works, history fiction fantasy novel Chandrakanta, was transformed into a TV series in the mid-90s, albeit with significant alterations to suit the television audience. Other notable works by him include Bhootnath, Kajar Ki Kothari, Narendra Mohini, Kusum Kumari and Gupta Godna.
40 के दशक की ब्यूटी क्वीन और हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री नसीम बानो का निधन आज ही के दिन 2002 को हुआ था और नसीम की ऐसी शाही परवरिश हुई कि वो स्कूल भी पालकी से जाती थी।
क्या बात है?
किसी की नजर ना लगे इसलिए हमेशा पर्दे में रहती थी और ये सायरा बानो की माँ और अभिनेता दिलीप कुमार की सास थी।
अच्छा।
उन्होंने ना करियर की जो शुरुआत है वो फिल्म खून का खून से की और पहली ही फिल्म की कामयाबी के बाद नसीम बानो की ख्याति पूरे देश में फैल गई। उसके बाद नसीम बानो ने सौरभ मोदी के साथ कई फिल्में की, इनमें तलाक, मीठा जहर, बसंती जैसी फिल्में थीं और फिल्म पुकार में नूरजहां का किरदार निभाकर नसीम बानो मशहूर हो गई। 60 के दशक में आई फिल्म के बाद नसीम ने अजीब लड़की अभिनय के सफल करियर से संन्यास ले लिया। वजह थी उनकी बेटी सायरा बानो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये तो है कि अगर आप कोई भी काम करते हो तो एक स्ट्रगल तो करते हो, देखो माँ पर क्या असर आया। उसके बाद ना नसीम ने बतौर फैशन डिजाइनर काम शुरू किया और अपनी बेटी की कई फिल्मों के लिए उनको ड्रेसेस डिजाइन की।
दिस इज अमेजिंग। टुडे इज द बर्थडे ऑफ लेजेंडरी सिंगर पॉल मैकार्टनी, an English singer, songwriter and musician. He gained worldwide fame with the band The Beatles, for whom he played bass guitar and shared primary songwriting and lead vocal duties with John Lennon. One of the most successful composers and performers of all time, McCartney is known for his melodic approach to bass playing, versatile and wide tenor vocal range and musical eclecticism. Let us listen to this song sung by him.
Holding my heart your hand, I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now.
Ramya, आपको पता है आज इंटरनेशनल पिकनिक डे है?
क्या बात है, पिकनिक पे चली आज।
पता है आज क्या होता है कि फिर भी सारे लोग बैठकर उतना एंजॉय नहीं करते जितना कि सब कुछ फोटो डालते
डालना पड़ता है।
व्हाट्सएप पे, लिंक्डइन पे, मतलब कहीं भी
और मोमेंट एंजॉय नहीं कर पाते हैं।
बिल्कुल।
तो हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आज इंटरनेशनल पिकनिक डे है, तो अपने परिवार को लीजिए, जब धूप डल जाए तो जाइए पिकनिक मना के आइए,
और इससे मजा आएगा और लगेगा कि हाँ कुछ एंजॉय किया। हर वक्त काम काम, ये कुछ खास बात नहीं है। लेकिन अब समय खत्म हो रहा है, हमें भी लगता है हमें चलना चाहिए।
जी,
आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, तो इजाजत दीजिए मुझे यानी चारू सक्सेना और मेरी सहयोगी रम्या कौर।
नमस्कार, नमस्कार।